ये आकाशवाणी है। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। इससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है।
हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता समरसता का एक असाधारण संगम है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरा करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 20वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कृष्णा जिले में कोंडापाउलूरू में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विकास के लिए हर संभव सहायता देगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री और नायडू की जोड़ी राज्य के विकास को नई रफ्तार देगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के डाओस में कल से शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। श्री वैष्णव कार्यक्रम में देश के विकास मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से वंचित लोगों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। इसने आरोपी की पहचान शरीफुल इस्माल शहजाद के रूप में की है। आरोपी डकैती के इरादे से अभिनेता के घर में घुसा था। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संभवतः बांग्लादेशी नागरिक है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज आग लग गई और धुएं के गुबार दूर तक देखे गए। बताया गया है कि इस घटना में एक व्यक्ति घायल है और उसे अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच आज गजा में संघर्ष विराम स्थानीय समय के अनुसार 11:15 से प्रभावी हुआ। यह अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ है। मध्यस्थकार कतर ने संघर्ष विराम आरंभ होने की पुष्टि की है और शुरुआत के लिए विदेशी नागरिकता रखने वाले 3 नागरिकों को रिहा किया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्हें बंदी बनाए गए लोगों की सूची मिली है जिन्हें समझौते के अनुसार रिहा किया जाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है वे अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, संस्था में शामिल होने और छोड़ने की तिथि के किसी दस्तावेज को अपलोड किए बिना ही स्वयं अपडेट कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि संशोधन से लगभग 3,90,000 सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिम हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि इस महीने की 22 और 23 तारीख को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। खो खो विश्व कप के फाइनल में आज नई दिल्ली में भारत की पुरुष और महिला टीमों का मुकाबला नेपाल से होगा। महिला टीम का मैच शाम 6 बजे से जबकि पुरुष टीम का मुकाबला रात 7:45 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।